ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। कल हम सब ने हमारे अति प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी। सबने ध्यान से सुनी ना मुरली। बाबा ने हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाया। बच्चे इस संगम युग पर मैं तुम्हें तीन तख्त का मालिक बनाता हूं। पहला तख्त है स्वराज्य का तख्त, दूसरा तख्त है भगवान का दिल तख्त, और तीसरा तख्त है विश्व का राज्य तख्त। तो जब बाबा की मुरली सुन रहे थे तो कितना नशा चढ़ रहा होगा जरूर। पर ये तीन तख्त हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, वो भी बाबा ने बताया। क्योंकि इन तीनों तख्तों का आपस में संबंध है। सबसे पहला तख्त स्वराज्य का तख्त। जब स्वराज्य के तख्त पर बैठेंगे तभी बाबा का दिल तख्त जीत सकेंगे, और जब बाबा का दिल तख्त जीत सकेंगे तभी विश्व का राज्य तख्त भी ले सकेंगे। तो बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि स्वराज्य के तख्त पर कैसे बैठो, क्योंकि तीनों का आपस में संबंध है। अगर स्वराज्य के तख्त पर नहीं बैठ सके तो बाबा का दिल तख्त भी नहीं जीत सकेंगे, और भविष्य का राज्य तख्त मिलने का तो सवाल ही नहीं। तो स्वराज्य के बाबा ने कई बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। किसको कहेंगे हम स्वराज्य, स्व पर राज्य, स्व पर शासन। आजकल राजनीति में हम सुशासन ये नाम सुनते हैं, गवर्नेंस। तो सुशासन भी तब होगा जब पहले स्वशासन हो। आत्मा राजा है इन कर्म इंद्रियों की, आत्मा राजा है मन बुद्धि संस्कार की, और कर्म इंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। और बाबा ने यहां तक कहा कि भविष्य में एक राज्य होगा, तो हमारा कौन सा एक राज्य है? आत्मा राजा बने, दूसरा राजा ना आ जाए वार करने। कलयुग में तो डर लगता है ना कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर वार न करे। तो हमारे दुश्मन ये पांच विकार है। हमारा दुश्मन माया रावण है, तो कहीं वो हमारे ऊपर वार तो नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हमारा स्वशासन या स्वराज्य अधिकार कितना है। हर कर्म इंद्रिय की चेकिंग करनी होगी। हमारी आंखें तो कभी धोखा नहीं देती, हमारा मुख तो कभी धोखा नहीं देता, हमारे कान तो कभी धोखा नहीं देते, हमारे हाथ पैर ये तो कभी धोखा नहीं देते, हमारी जीभ तो कहीं हमें धोखा नहीं देती। तो उसकी चेकिंग करना ही अपने आप को स्व के राज्य का अधिकार लेना है। और चेकिंग करके बाबा कहते चेंज करो। अगर बाबा का दिल तख्त जीतना है, अगर विश्व का तख्त जीतना है और उसमें बहुत काल का अनुभव हो, हम ये न समझे कि अंत में हम विजयी बन जाएंगे। अंत में अगर विजयी बने तो उस विजय का अनुभव कब करेंगे? अनुभव भी तो बहुत काल का चाहिए ना। अगर अंत में विजयी बनेंगे तो फिर बहुत काल का अनुभव तो हो नहीं सकेगा। उसी समय हुआ और शरीर छूटा। और बाबा ने ये भी भेंट किया है, यहां जितना बहुत काल का शासन होगा स्व पर, उतना भविष्य में अधिक समय पर विश्व पर शासन होगा। अगर यह अंत में होगा तो वहां पर क्या शासन कर सकेंगे? क्योंकि बाबा हम बच्चों को ये भी याद दिलाते हैं कि बच्चे सब कुछ अचानक होगा, सब कुछ अचानक होगा। कुछ भी बताकर नहीं आएगा, किसका भी हमें पहले से आभास नहीं होगा। लगेगा ये तो सब सामान्य है और अचानक कुछ हो जाता है। अभी भी हम देखते हैं ना कलयुग की दुनिया में मौत का बाजार कितना गर्म है। अचानक एक्सीडेंट हो गया, पता थोड़ी चलता है। मौत से गाड़ी चला रहे हैं और एकदम सामने से गाड़ी आ गई और ओम शांति, कुछ पता नहीं चलता है। अचानक बैठे बैठे हार्ट फेल हो गए, बैठे बैठे कुछ भी नहीं था और अचानक आत्मा उड़ गई। अचानक आक्रमण हो गया, पहले से कोई अंदाजा नहीं था। तो इस कलयुगी दुनिया में अचानक का खेल है। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे सदा सावधान रहना है। रोड पर हम गाड़ी चला के जा रहे हैं तो वहां पर भी बोर्ड होते हैं, सावधानी हटी तो क्या होता है, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम कई ड्राइवरों को देखते हैं गाड़ी में फोन पर बात करते रहते हैं, गाड़ी कहाँ चली जाती है उनको पता भी नहीं चलता है। और एकदम धम, हाँ पता ही नहीं चला क्या पड़ी है। इसीलिए हर वक्त सावधानी चाहिए। तो इस जीवन के मार्ग में भी हर वक्त सावधानी चाहिए। क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है। हमारे तरफ से हम सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरा हम पर भी अटैक कर सकता है। हम तो ठीक है ना, देखते ना रास्ते पर हम जाते हैं, सामने से मोटरसाइकिल आ गई और ओवरटेक करने की कोशिश किया, धड़ाम गाड़ी से लग गया। फिर अब पछतावत क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, हो गया एक्सीडेंट। तो हम भी अगर अटेंशन देते पर दूसरा नहीं देता तो भी नुकसान हो सकता है। तो हमें डबल सावधानी बरतनी होगी। हमें क्रोध नहीं आता है, लेकिन हम क्या बहाना देते हैं कि उसने हमको क्रोध दिलाया, माना उसने एक्सीडेंट करवाया, वो सामने आ गया, मैं नहीं गया। तो उसने क्रोध दिलाया क्योंकि उसने क्रोध किया, तो ये सामने वाले का दोष है। अब सामने वाला तो कहेगा कि हम तो अपने रास्ते पर जा रहे थे और अचानक अचानक पता ही नहीं चलता है कैसे हो गया। तो हमारी कर्म इंद्रियों पर हमारा कितना शासन है। हम सब राजयोग सीख रहे हैं, तो राजयोग माना क्या? राजाई पाने के लिए योग। राजयोग किसको कहते हैं? राजाई पाने के लिए योग। कौरवों और पांडवों के युद्ध के पहले भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया और क्या कहा? हे अर्जुन, इस राजयोग से तुम राजाओं के राजा बनोगे। तो राजयोग किस लिए है? राजाओं का राजा बनने के लिए। पांडवों को राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन कौरवों ने उनको राज्य नहीं दिया और यहां तक कह दिया कि एक सुई की नोक जितनी भी जमीन हम नहीं देंगे। नहीं तो पूरा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए था, पांडु के बाद उनके बच्चों को मिलना चाहिए था, लेकिन छल से धृतराष्ट्र ने ले लिया, कौरवों का राज्य हो गया। तो ये है ही राजयोग। तो हमारे लिए कौरव कौन है? माया, रावण। हथियार पवार हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन योग बल है। तो योग बल से हम सबसे पहले अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। हर एक अंग हमारे वश में हो, और उसकी सहज युक्ति बाबा क्या बताते हैं? आज भी बाबा ने कहा, इस महीने का अव्यक्त इशारा ही क्या है, कैसे अशरीरी बनना है। एक सेकंड में अशरीरी, एक सेकंड में अशरीरी बनो, एक सेकंड में कर्म में आओ, फिर अशरीरी बन जाओ। एक सेकंड में देह से न्यारे, ये हमारा अभ्यास बहुत जरूरी है। तब हम कर्म इंद्रियों पर शासन कर सकेंगे, क्योंकि मैं आत्मा इन इंद्रियों का मालिक हूं। ये केवल कहने की बात नहीं है, मालिक ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, क्योंकि कर्म इंद्रियां तो अभी मालिक बन गई है ना। ये पंच कर्म इंद्रियां अब पंच विकारों के वश है। अगर हम देखें कौन सी है ये पांच इंद्रियां, फाइव सेंसेस कहते हैं, नाक के द्वारा सुगंध लेते हैं, आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, जीभ द्वारा स्वाद लेते हैं, फिर चमड़ी, ये पांचवा स्पर्श, स्पर्श द्वारा एक जैसे स्पर्श से कैसे वो आनंद का अनुभव होता है, शारीरिक आनंद लेते हैं, और ये सब विकारों से जुड़ा हुआ है। काम वासना ये चर्म का आकर्षण है। काम वासना क्या है? चमड़ी का आकर्षण, चमड़ी, चमड़ी के ही वश होते हैं ना, तभी तो काम विकार होता है और उसमें एक आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये स्पर्श रस हो गया, तो स्पर्श रस ये काम वासना की ओर प्रेरित करता है। फिर दूसरा है ये जीभ रस, जीभ को जो पसंद है वो कई बार पेट को पसंद नहीं है, क्योंकि पेट में तो कोई स्वाद नहीं है, जीभ तक ही स्वाद है, और वो जैसे ही भोजन अंदर गया स्वाद खत्म। और वो क्या क्या खाते हैं जीभ के खातिर, उस स्वाद के खातिर, परिणाम स्वरूप सारी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेट को बिगाड़ देते हैं। क्यों बिगड़ गया पेट? क्यों पेट में दर्द हुआ? क्यों डायरिया हो गया? क्यों उल्टी हो गई? जरूर कुछ ऐसा खाया होगा, जरूर ऐसा खाया होगा तभी ये हुआ। तो ये जीभ रस, तो जीभ रस क्या है? स्वाद। स्वाद के पीछे मनुष्य पागल है आज। स्वाद नहीं है तो फेंक देंगे, आज कोई स्वाद नहीं है, मुझे नहीं खाना है। तो जीभ रस, तो ये सारी इंद्रियों के रस हैं। तो लोभवश माना स्वाद। हाँ, कई मिसाल देते हैं ना, ब्राह्मण लोग धामा खाने जाते हैं, अपने जजमानों के घर में धामा खाते हैं, तो बहुत लड्डू अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट था, कई खा लिए लड्डू, आखिर तो इतना खा लिया कि वो उठ भी नहीं सकता, इतना भारी हो गया पेट। तो किसी ने उनको कहा कि ब्राह्मण जी, आप हाजमोला खा लो, हाजमोला खाएंगे तो आपका पाचन हो जाएगा, भोजन पच जाएगा, हाजमोला खा लो। तो उसने कहा, पेट में अगर जगह होती तो एक लड्डू और क्यों नहीं खा लेता हाजमोला की जगह। इतनी भी जगह नहीं जो हाजमोला खा सके, अगर जगह होती तो लड्डू खा लेता। तो देखो इतना लोभ हो जाता है, इतना लोभ हो जाता है जो उठ ही नहीं सकते, पेट इतना भारी हो गया, भाई इतना खाया क्यों। परंतु लोभ भी ऐसी बहुत बड़ी बला है, और कहा जाता है लोभी नर कंगाल है। केवल भोजन का लोभ नहीं है, धन का लोभ, मान का लोभ, इज्जत का लोभ। तो नाम मान शान धन संपत्ति वैभव, पता नहीं क्या क्या, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कितना चाहिए। पेट तो एक ही है, पेट को ज्यादा देंगे तो पेट स्वीकार नहीं करेगा। कपड़े भी तो एक समय पर एक ही ड्रेस पहनेंगे, जूता भी तो एक ही पहनेंगे एक समय पर, लेकिन आज का मनुष्य पेट के लिए कहाँ कमाता है। पेट के लिए कमाए तो कभी भूख नहीं मरेगा, लेकिन पेटियों के लिए कमाता है ना, पेटियों के लिए, पेटियां भरनी है। और फिर बाबा क्या कहते हैं, कोई की राजा खाएगा, कोई की बैंक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो गया, भूकंप आया, सब दब गया, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। बस यही होता है कलयुगी दुनिया में। तो बाबा कहते इतना क्यों ये सब करना है, जबकि न कुछ लाए हैं न ले जाएंगे। लेकिन आज का मनुष्य कहाँ ये सोच रहा है। तो लोभ मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाता है, और शुरू होता है जीव से। फिर देखो तो क्रोध भी तो पहले आंखों से निकलता है, मुख से तो बाद में क्रोध आएगा। जब किसको गुस्सा आता है ना, तो मुख से तो बाद में निकालेगा गुस्सा, लेकिन पहले आंखें, ऐसी आंखें हो जाती है कि उसके अंदर देखो कितना गुस्सा भरा हुआ है, पता चल जाता है कि अभी ये बरसेगा, क्योंकि आंखें दिखाती है। ऐसे कहावत है कि चेहरा मन का दर्पण है, मन में क्या चल रहा है उसका पहला पता चलता है आपके चेहरे से, लेकिन चेहरे से भी पहले आंखों से पता चलता है। एक एक विकार भी आंखों से पता चल जाता है, काम वासना भी पहले आंखों से पता चलता है कि जैसे ये इसके आकर्षण में है। क्रोध भी आंखों से, लोभ भी पहले देखा, मोह भी देखा, पर क्रोध सबसे ज्यादा पता चलता है आंखों से। तो काम भी त्वचा के कारण काम, आंखों के कारण क्रोध, जीभ के कारण लोभ, फिर मोह है नाक। किससे मोह होता है ना, वो उनको इतना जैसे पकड़ के उनको इतना उनका उनको सूंघते रहते हैं, जो बात बात मत पूछो। आजकल तो मनुष्यों को जितना प्यार नहीं करते, जितना जानवरों को प्यार करते हैं ना, कुत्ते इतने प्यारे लगते हैं, बस उनको ही सूंघते रहते हैं। एक जगह मैं दुबई में गई थी, तो किसी से मिलने गए थे, तो उनकी जो बहू थी वो दो कुत्ते पाल रही थी, बहुत प्यारे कुत्ते थे। अब उनकी सास कहे कि मैं चाहती हूँ मुझे पोते मिले, पर मेरी बहू तो मानती नहीं है, मुझे पोता चाहिए। तो मेरी बहू कहती है ये कुत्तों को ही पोता मान लो, ये इन कुत्तों को ही पोता मान लो, यही हमारे बच्चे हैं, हमको और बच्चे चाहिए नहीं, बस हमारे लिए तो कुत्ते ही सब कुछ है। और फिर उनका एक कुत्ता मर गया, वो इतनी रोई जैसे कि सचमुच उनका सारी दुनिया लुट गई, अब एक कुत्ता ही तो मरा। लेकिन है आज की इंसान। एक जगह मैं गई थी, तो वहाँ एक माता पहले आती थी ज्ञान में, फिर तो थोड़ी बुजुर्ग हो गई तो आ नहीं सकी। मधुबन भी एक दो बार आई थी, लेकिन वो फिर क्लास में भी नहीं जाती थी, मधुबन तो छोड़ो। तो परंतु अच्छी मददगार तो थी पहले, तो बहुत पुरानी थी, तो मुझे किसने कहा आप इनके घर जाओ, वो बीमार भी है थोड़ा। तो ऐसे बहुत बीमार तो नहीं थी, पर फिर भी तो आप उनसे मिल के आओ, वो आपको याद करती है। तो मैं गई मिलने के लिए, और जैसे गई ना, इतनी सारी कम से कम 10-12 बिल्लियाँ होंगी उनकी बिल्लियाँ, इतनी बिल्लियाँ थी बात मत पूछो। तो मैंने कहा ये सब इतनी बिल्लियाँ पाल रही हो, तो कहा बस यही मेरा परिवार है। तो मैंने कहा कि आप मधुबन में नहीं आई, कितने साल हो गए। तो कहा क्या करूँ, बिल्लियों को कौन पाले। तो हमने कहा क्यों आपका कोई परिवार नहीं है? बस यही मेरा परिवार है और मैं इनसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जब भी मुझे कुछ गुस्सा आता है किसी पर तो मेरी जो बिल्ली है ना वो मेरे पाँव चाटती है, याँ कहती है, तो मेरी सारा मेरे साथ गुस्सा खत्म हो जाता है। मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाए, वो प्यार से म्याँ कहती है, मेरे पैर चाटती है। तो इसलिए मुझे इनसे ही प्यार है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो मधुबन भी नहीं आना है, अटलास में भी नहीं आना है, क्योंकि बिल्लियों को कौन पालेगा। तो देखो है ऐसे इंसान, परंतु बिल्लियों को कुत्ते को ऐसा उनको रगड़ते हैं अपने नाक के साथ। हाँ इतना जो बात मत पूछो, तो ये मोह कहाँ से, ये नाक से शुरू होता है। तो काम क्रोध लोभ मोह और फिर अहंकार, ये कान कान खड़े हो जाते हैं। किसी ने मुझे मेरी ग्लानी की, किसने मेरे लिए बुरा भला कहा, तुरंत कान खड़े हो जाते। इसने मेरे लिए ऐसे कहा, कान खड़े हो गए ना, कान खड़े हो गए। तो अभिमान, मनुष्य के अंदर इतना अभिमान आ जाता है कि वो शुद्ध बुद्धि भूल जाता है अभिमान के कारण। तो इसको ही बाबा कहते हैं माया, यही रावण का स्वरूप है और इसको ही तो हमें जीतना है। ये पांच इंद्रियों को जीतना यही है माया को जीतना। और जब पांच इंद्रियों के वश है तो फिर सोच समझ कर कर्म नहीं करते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, विकराल विनाश खड़ा आगे।
तो जब आत्मा कर्म इंद्रियों के वश हो जाती है तब तो क्या होता है, कर्म इंद्रियों के वश क्यों होती है? क्योंकि कर्म इंद्रियां मालिक बन गई। आज दुनिया में देह अभिमान के वश मनुष्य जो कर्म कर रहा है, विकारों के वशीभूत, वो कारण ये कि कर्म इंद्रियों के वश है। वैसे कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, कहावत तो यही है ना, सोच समझ कर कर्म करो। लेकिन जब कर्म इंद्रियों के वश हो जाता है तो सोच समझ कर कर्म नहीं करता है, क्योंकि सोच समझ कर करेगा तो कर्म ठीक करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि पहले सोचना होता है क्या करना है, फिर उसको समझना होता है कि ये कर्म करने से नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम सही नहीं होगा तो हमें ये नहीं करना है, ये बुद्धि निर्णय देती है, और फिर करना होता है जो भी बुद्धि निर्णय दे। लेकिन आत्मा जब कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाती है तो मन और बुद्धि काम नहीं करते, सीधा इंद्रियां मालिक बन जाती है और बिना सोचे समझे कर लेते हैं, बिना सोचे समझे। और बिना सोचे समझे कर लिया तो नतीजा क्या होता है, कितने ऐसे कर्म हो जाते हैं जो बिना सोचे कर लिया, और फिर चाहे कितना भी आप उसको संवारने की कोशिश करो, किसी को ऐसे थप्पड़ मार दी, बिना सोचे समझे ऐसे थप्पड़ मार दी, अब उसका तो स्वमान को तो ठेस पहुंची ना। फिर आप कितना भी उनको सॉरी माफ करो, मेरा मतलब नहीं था, मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी, कितनी भी बातें कह दो पर थप्पड़ तो मार दी ना, कितना भी फिर आगे पीछे कुछ भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो कर लिया। तो अगर वो कर्म ठीक नहीं है तो नहीं करना चाहिए ना, लेकिन मार दिया क्योंकि देह अभिमान है। तो पहले गलत कर्म कर लिया, फिर समझा कि ये गलत था, चलो शुक्र करो समझ तो लिया कि ये गलत था, फिर समझने के बाद फिर सोचते अभी क्या करें, कई तो माफी भी नहीं मांगेंगे, कोई तो फिर भी समझकर सोचते अभी क्या करें, माफी मांगे क्या करें, कई तो वो भी नहीं समझते, समझते मैं तो बहुत ठीक किया, अच्छा ही किया, लेकिन वो भी एक समय आता है जब पश्चाताप होता है। मैं दुबई गई थी तो वहां एक माता अपनी बाबा की बहुत पुरानी माता है, तो उनके पति को कैंसर था, तो मुझे कहा कि बहन जी आप हॉस्पिटल चलो, मेरे पति से मिलो, वो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि पत्नी को बहुत मारता था, बहुत मारता था, पर वो पत्नी इतनी सहनशील, इतनी सहनशील, जो उसको जरा भी दुख नहीं देती थी, और वो तो इतना मारता था वो दुख सब सहन करती थी। बाबा तो कहते हैं ना जवाब नहीं दो, मुस्कुराओ या शांत हो जाओ, तो वो मारता भी था, चिल्लाता था, डांटता था, पता नहीं क्या क्या करता था, और वो सहन करती जाती थी। अब उनको कैंसर हो गया, पति को तो कैंसर का पता ही नहीं चला, और एकदम लास्ट स्टेज पर था, तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, पत्नी फिर भी उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन उसको बहुत पश्चाताप हुआ, रोता रहा रोता रहा रोता रहा, और यही पत्नी को बार बार कहे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत दुख दिया है। तो मेरे पास आई, कहा बहन जी आप चलो, मधुबन से आप आए हैं, आप चलो मेरे पति से मिलने के लिए। तो मैं गई देखने के लिए उसको, तो मेरे सामने भी बहुत खूब रोने लगा, रोने लगा, तो मैंने कहा अभी कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, और आपने माफी भी मांगी है, बहुत अच्छा। तो कहा नहीं, मैं आपके आगे माफी मांग रहा हूँ, आप भगवान को कहना मुझे माफ कर दे। हमको कहा भगवान को कहना हमें माफ कर दे, तो मैंने कहा ठीक है, हम भगवान को जरूर कहेंगे माफ कर दे, अभी आप शांति में रहो, शांति में रहो, बस आत्मा का ज्ञान दिया, आप आत्मा हो, आप ये देह नहीं हो। और इतनी प्यार से सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, और इतनी शांति मिली उसको, उसी समय उसको नींद आ गई, नींद आ गई, माना वो नहीं तो उसको नींद ही नहीं आती थी। और तो अगले दिन जब मैं, और बहुत एक डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि अभी कुछ घंटों का मेहमान है, तो दूसरे दिन सवेरे में जब क्लास करा रही थी तो अभी योग पूरा ही हुआ था, तो मुझे जैसे वो आत्मा याद आई, तो मैंने ये बताया उन कैसे उसके पति ने ऐसे माफ़ी मांगी और कहा बस मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो उसको कैसे शांति का अनुभव हुआ। और जैसे ही उसको हम याद कर रहे थे उसी समय समाचार आया कि उसने शरीर छोड़ा शांति में। हाँ तो देखो, शांति में शरीर छोड़ा क्योंकि उसको शांति मिली, नहीं तो नींद ही नहीं आना, खाना क्या कुछ भी नहीं, जैसे बस बस मुझे माफ़ कर दो, इतने इतना ही मुख से शब्द निकल रहा था। और पीड़ा तो होती है ना शरीर में, अंतिम घड़ी होती है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो अंत में पीड़ा सहा और बस माफ़ करो माफ़ करो। तो जैसे उसका नाम लिया तो पता चला, तो उसी समय मुरली शुरू करने से पहले, क्योंकि हमने यही सोचा कि हम थोड़ा उनको योगदान देंगे, तो मुरली तो हमने सुना, मुरली शुरू नहीं की और उसका उसकी बात सुनाई, और उसी समय समाचार मिला कि उसने शांति में शरीर छोड़ा। तो हमने कहा चलो मुरली सुनाने से पहले हम सब उस आत्मा को योगदान देंगे। तो देखो, कहने का मेरा भावार्थ है कि कर्म कर लिया पर सोचे समझे बिना, और कर्मों का क्या हिसाब किताब बनता है किसी को कुछ पता नहीं। आज भी एक बहन मेरे पास आई, क्योंकि अपनी अपना रोना रोते हैं बेचारी, तो बहुत अभी बाबा की बच्ची है, वो बहुत प्यार से बाबा को याद करती है, लेकिन उसका पति शराब बहुत पीता है, बहुत शराब पीता है, और कहे तुम्हारे कारण मैं पीता हूँ, मुझे तुमने दुख दिया। दे क्या दुख दिया है, कुछ भी दुख नहीं दिया, तो और पीता है और पीता है और इसको मारता है। तो कहा क्या करें हम, क्या करें, क्योंकि आजकल ये शराब की लत भी इतनी होती जा रही है जो बात मत पूछो, शराब ड्रग्स ये बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देखो बाबा ने हम बच्चों को कितना सेफ रखा है, जो भी बाबा हम, हाँ बिल्कुल सेफ रखा है, जो भी आज इतने सारे जो व्यसन हैं वो मनुष्य को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये जो बाबा ने हमको कैसे सेफ रखा है, जो नियम और मर्यादाएं बाबा ने हमें दी है, चाहे संग दोष की मर्यादा, चाहे अन्न दोष की मर्यादा, हाँ चाहे अमृत वेला उठना है, चाहे रात को हमें बाबा की याद में सोना, ये सब जो नियम बाबा ने हमें दिए हैं, सोचो तो क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, करो तो क्या करो, देखो तो क्या देखो, सुनो तो क्या सुनो, तो ये जो बाबा ने हर मुरली में मर्यादाएं हमें दी है, अगर उसी श्रीमत पर हम चलते हैं तो हम सहज ही अपने इंद्रियों को जीत सकेंगे, और उसके ऊपर और सहज युक्ति शरीरी बन जाओ, बस एक सेकंड में आत्मा देह से न्यारी, मर गए दुनिया से। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो अलग हो गया, आत्मा उड़ गई, तो हम आत्मा भी इस शरीर से जैसे उड़ गई। अभी कितनी अच्छी कमेंट्री कराई ना आत्म प्रकाश भाई ने, तो कैसे उड़ गई आत्मा, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई और ये देह एकदम शांत हो गया। नहीं तो मनुष्य देह अभिमान में कैसे बैठना भी उनको नहीं आता है, ऐसे 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 करते रहेंगे, ठीक ढंग से शांति से बैठ भी नहीं पाते हैं क्योंकि देह अभिमान बहुत है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो आत्मा का ज्ञान दिया है, उससे कितने फायदे होते हैं वो भी एक लिस्ट बन सकती है, आत्मा के ज्ञान से कितने फायदे होते हैं। तो ये है अपने इंद्रियों को जीतना। मनुष्य तो सबसे बड़ा जो किसी को डर है ना, वो डर है मृत्यु का, सबसे बड़ा डर। और सब बातों का इतना डर डबियो, मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। और कईयों के मुंह में तो मृत्यु ही है, जैसे हाय मर गई, हाय मर गई, मर न जाओ, मर न जाओ, बस यही कहते रहते, मुख से वही शब्द निकलता। और बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान देकर क्या कहा, तुम आत्मा तो कभी मरती ही नहीं हो, अब बताओ कहाँ मर गई कहना, और कहाँ मैं आत्मा कभी मरती ही नहीं हूँ। परंतु बाबा हमें जीते जी जरूर मरना सिखाते, जीते जी मर जाओ, बाबा कहते कोई ऐसे किसी को नहीं सिखाता है जीते जी मरो, पर बाबा हमें सिखाते हैं, क्योंकि घर जाना है, घर जाना है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमें जाना है। तो स्वराज्य अधिकारी कौन बन सकता है, जो इन नियमों और मर्यादाओं पर चलेगा। ब्रह्मा बाबा ने देखो एक सेकंड में कैसे सब कुछ त्याग किस आधार पर किया, ऐसे नहीं कि कोई जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन बाबा ने किस आधार पर त्याग किया, एक तो बड़ा आधार तो यही था जो बाबा को कहा गया, बाबा ने अनुभव किया कि मैं तो विश्व महाराजन बनूंगा। विष्णु का साक्षात्कार हुआ बाबा को, जिसकी भक्ति करते थे बाबा, साकार बाबा जिसकी भक्ति करते थे, उसने ही उनको वरदान दिया विष्णु का साक्षात्कार करके, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो मेरे जैसे हो। ब्रह्मा बाबा तो हैरान हो गए, मैं इन जैसा कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका दास हूँ, इनका सेवक हूँ, क्योंकि विष्णु की भक्ति करते थे, तो मेरे जैसे हो, कितना बड़ा वरदान मिल गया। भक्ति मार्ग में जो वरदान मिलते हैं ना, अपने इष्ट से वरदान मिलते हैं, जब बहुत भक्ति करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, तो उनके दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार में सब जो कोई देवी का भक्त है, कोई देवता का भक्त है, कोई किसी का भी भक्त है, और जब उनको साक्षात्कार होता है तो वो देव या देवी उनको जो वरदान देते हैं ना, वो वरदान क्या होता है, तथास्तु, तथास्तु, ऐसा वरदान देकर कहेंगे तथास्तु, माना वैसा ही होगा, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, तथास्तु वैसा ही होगा। लेकिन बाबा को तथास्तु का वरदान नहीं मिला आपको, क्योंकि बाबा को कोई इच्छा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कुछ भी इच्छा नहीं थी, बाबा संतुष्ट थे अपने जीवन से, क्योंकि बहुत धन धान्य की तो कमी थी नहीं, बहुत फ्लरिशिंग धंधा था, बिजनेस अंग्रेजों से, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना होता था, बहुत सम्मान मिलता था समाज में। लेकिन हाँ, सत्य को जानने की खोज जरूर थी बाबा को, इसलिए शास्त्र इतने पढ़ डाले, इतने गुरु किए सत्य को जानने के लिए। और जब बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का, और विष्णु ने उनको वरदान दिया, तो मेरे जैसे हो, तो बाबा ने एक मुरली में सुनाया, तो मुझे तो नशा चढ़ गया, मैं जैसे हूँ, हाँ मैं जैसा हूँ, तो देखो मैं जैसा हूँ, डबल ताजधारी हूँ, नशा चढ़ गया। और इसीलिए इस कलयुगी दुनिया से इतना वैराग आ गया बाबा को, क्योंकि भगवान हमको इतना ऊंचा बनाते हैं। तो बहुत सहज त्याग करना हो गया, और बाबा भी कहते तुम्हारे लिए भी इतना सहज हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम वनवा में बैठे हो। बाबा मिसाल देते हैं ना, एक शादी से एक दिन पहले कुमारी वो वनवा में होती है, साधारण कपड़े पहनती है, साधारण सब कुछ साधारण होता है, तेल लगाते, हल्दी लगाती है, हाँ तो बहुत कुछ करती है, तो साधारण है। परंतु वो साधारण में रहने में उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम कल हमारा विवाह होगा तो हम खूब श्रृंगार करेंगे, खूब सुंदर कपड़े पहनेंगे, खूब सुंदर लगेंगे। तो कल उनको जो प्राप्ति होनी है उसके पहले अगर बनवा में है तो उसको दुख नहीं है। तो हमें भी बाबा कहते तुमको बहुत सिंपल रहना है, उस दिन बाबा की मुरली थी ना, तुमको बहुत सिंपल रहना है, तुम तो वनवा में हो तो बहुत सिंपल क्यों रहना जरूरी है, ये भी समय की मांग है, समय की मांग है। इसलिए बाबा ने कहा कोई फैशन करे, बहुत गहने पहने, बहुत हीरे आदि, तो कोई भी चोर लूट लेंगे, डाकू लूट लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना आप सिंपल रहेंगे उतना बाबा कहते तुम सुरक्षित रहेंगे, अन्न की जितनी शुद्धि रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आजकल क्या क्या मिला देते हैं भोजन में, पता ही नहीं चलता है, कुछ भी मिला लेंगे, बेहोश कर देंगे। तो अन्न की शुद्धि भी जरूरी है, फिर संग की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। आजकल तो संग भी इतना बुरा है, बात मत पूछो। ऐसे दोस्त मिलेंगे, चलो थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, कुछ नहीं होता है, और एक बार पीने का चस्का लग गया फिर वो मिटना असंभव है। थोड़ा भी पी लिया, कोई कहेगा थोड़ा सा पी लिया कौन देखता है, थोड़ा सा सिगरेट पी लिया कौन देखता है, तो कौन देखता है, भले कोई न भी देखे, पर वो थोड़ा भी अगर किया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है आगे चल करके। और एक बार किसी ने अगर देख भी लिया वो थोड़ा सा छोटा सा, वो कहेगा ये तो पीता ही है, ये तो सिगरेट पीता है, ये तो ये करता है। फिर कितना भी कहो तो एक ही बार केवल पिया था। तो बाबा कहते बहुत संभाल चाहिए, बहुत संभाल, सोच समझ कर कर्म करो। तो ये कर्म इंद्रियों का राजा बनना बहुत जरूरी है। जब कर्म इंद्रियों का राजा बनेंगे तब फिर विश्व का राजा बनेंगे। तो पहले कर्म इंद्रियों पर विजय, मन इंद्रियों को अपने वश में रखे। अभी इंद्रियां मन को अपने वश में रखती है ना, दुनिया में तो यही हाल है, जहां इंद्रियां खींच गई, खींच के ले जाते मन वहीं चला जाता है, जीभ रस, कन्न रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को खींच लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार पर भी तुम्हारा राज्य हो, मैं जो सोचना चाहूं वो ही सोचूं, जो बात मुझे नहीं सोचनी है उसी वक्त मैं ब्रेक लगाऊं। और उसके लिए भी बाबा ने युक्ति बताई है, तीन बिंदु लगा दो, तीन बिंदु से आप जो नहीं सोचना चाहते हो वो आपका सोच बंद हो जाएगा। जैसे कोई व्यर्थ सोच में चले गए उस समय याद करो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बिंदु हूं, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, सोच जो भी चलते हैं व्यर्थ वो सब किस किस के चलेंगे, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, कोई परिस्थिति, कोई बात, वही चलेगी, नेगेटिव कुछ और बातें क्या क्या सोचेंगे। अब मैं आत्मा मर गई इस देह से, तो वो सोच एक सेकंड में बंद। तो जैसे ये तीन बिंदु लगाओ और अंदर में ये दृढ़ संकल्प जो बाबा कहते हैं ना, नहीं, ये नहीं सोचना है, तो ऑटोमेटिकली मन वो चुप हो जाएगा। दुनिया में मन को दमन करने लिए बहुत प्रयास करते हैं, मन को डाइवर्ट करने लिए क्या प्रयास करते हैं, श्वास पर केंद्रित करो, अपना मन श्वास पर केंद्रित करो, अंदर में देखो श्वास कितना ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं, या माला जपेंगे या कोई मूर्ति का ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मंत्र जपते रहेंगे, जाप करते रहेंगे कि मन उसमें लगे। परंतु मन नहीं लगता उसमें, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उंगलियों ने तो काम, उंगलियों को तो काम दिया, मणके फेरने का, आंखों को भी काम दिया मूर्ति को, मूर्ति पर ध्यान लगाने का, मुख को भी काम दिया जाप करने का, पर मन को काम नहीं दिया। तो मन तो अपना काम करेगा, वो तो बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा, है ना। फिर मन के ऊपर बुद्धि है, वो लगाम है, मन को रोकती भी है। होता है ना, कई बार हम कोई गलत सोचते हैं तो फिर अंदर में आता है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये बुद्धि कहती है मन को, क्योंकि आत्मा तो अपने असली रूप में बहुत स्वच्छ है, पवित्र है। हर आत्मा अपने मूल गुणों को चाहती है। कोई भी आत्मा अशांत नहीं होना चाहती, कोई आत्मा दुखी नहीं होना चाहती है। तो शांति सुख सब क्यों चाहती है? क्योंकि आत्मा का वही गुण है। तो हरेक अपने स्वभाव को पहचान जानते हुए उनका अनुभव करना चाहते हैं। तो जब आत्मा को ये पता है तो बुद्धि मन को रोकती है, नहीं सोचो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी कर लिया, क्योंकि कर्म इंद्रियों के वश है। तो कर्म इंद्रियां तो थोड़ी सोचती है, वो तो मालिक बन गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों को जीतो, फिर मन बुद्धि संस्कार को भी जीतो। बुद्धि भी संग के रंग में आ जाती है, और संग के रंग में आ गई तो अपनी बुद्धि नहीं चलाते, वो दूसरे की बुद्धि काम करती है। दोस्त मिल गया, अरे छोड़ो यार, क्या ये सब करना है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, आज मर गए तो खत्म। लेकिन बाबा कहते ऐसे भी नहीं है, आज मर गए तो खत्म, मर गए तो खत्म नहीं है, आत्मा दूसरा जन्म लेगी, वो सब वहां चलेंगे, वही संस्कार खत्म नहीं हुए। कई जो आत्महत्या करते हैं, जीव घात करते हैं, वो क्यों ऐसे करते हैं, समझते हैं इनसे छुटकारा पा ले हम, तो बस मर गए तो खत्म, लेकिन खत्म नहीं हुए। अगर किसी ने कर्जा उठाया है किसका, उसको वापस नहीं कर पा रहा है, तो कई ऐसे कर्जा बहुत उठा लिया, ऐसे ही बेढंगे रूप से खर्चा कर लिया, कर्जा उठाते गए और पैसा दे नहीं सके, तो फिर क्या करते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं कि हम तो खत्म हो जाएंगे, हम कहाँ कर्जा देंगे वापस। लेकिन कर्जा खत्म नहीं हुआ, वो आत्मा वो हिसाब किताब लेके गई अगले जन्म के लिए, तो अगले जन्म में भी उसको हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हो गया पूरा, वह मर गए तो खत्म हुआ, नहीं, क्योंकि वो संस्कार तो आत्मा में भर गए ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कभी किसी के भी कोई भी कर्जे का बोझ मत उठाओ। एक कहावत भी है कि आप पांव उतना ही पसारो जितनी आपकी चद्दर है। अब चद्दर आपकी छोटी है और पांव तो इतना पसार लिया कि पांव उस चद्दर के बाहर चले गए, तो ठंडी तो लगेगी ना। तो उतना ही पसारो पांव को जितनी आपकी चद्दर की साइज है, नहीं तो ठंड लगेगी। तो उतना ही करो जितना जितनी आपकी क्षमता है, उसके बाहर क्यों जाते हो जो कर्जा उठाना पड़े। अभी भी हम देखते हैं, देखो बाबा यहाँ इतने मकान बनाने पड़ते हैं, बाप बच्चे कहाँ के रहेंगे, बाबा बनवाते हैं। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे कोई भी मकान बनाओ ना, सेंटर के लिए भी बनाओ या जो कुछ भी, पहले कम से कम आधा पैसा आना चाहिए, कर्जा नहीं उठाना है, आधा पैसा आना चाहिए, फिर भले शुरू करो। ऐसे भी नहीं कि शुरू नहीं करो, पर आधा कम से कम जितना खर्चा होना है उसका आधा तो कम से कम मिलना चाहिए, फिर भले शुरू करो, फिर अपने आप आता जाएगा, क्योंकि हम सफल कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, नहीं तो लोग समझेंगे तो सफल तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे उतनी ही शक्ति को आप प्रयोग करो जितनी आप में क्षमता है। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सचमुच, क्योंकि अचानक कुछ हो गया, हार्ट पेल खत्म है ना। दुनिया में अब देखते हैं तो कहते हैं भाई आधा जीवन तो कमाने में लगा और पर शरीर पर ध्यान नहीं दिया, खाली कमाऊं कमाऊं पैसा पैसा पैसा, आधा जीवन तो उसमें चला गया। और फिर थोड़ा बुजुर्ग हो गए तो उसके बाद बीमारियां आ गई और बीमारियों में वो जितना पैसा कमाया वो बीमारियों में लग, वो दवाइयों में लग गया। उसकी वजह पहले से संभालते थे ना अपने शरीर को, है ना, क्योंकि जो मेरा वर्तमान है वो मेरे भूत के आधार पर है और जो वर्तमान है वही भूत वही भविष्य बनाएगा। केवल वर्तमान ही सब कुछ नहीं है। दुनिया में इससे उल्टा सोचते हैं, दुनिया में क्या सोचते हैं, जो बीत गया वो इतिहास था, वो भूल जाओ वो भूल जाओ, और भविष्य जो आने वाला है वो तो एक मिस्ट्री है, वो तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। इसलिए जो वर्तमान है उसमें ही जियो। लेकिन वर्तमान में केवल जियो नहीं, क्योंकि वर्तमान भूत का आधार है और वर्तमान भविष्य को बनाएगा। इसलिए तीनों का आपस में संबंध है, भूत वर्तमान और भविष्य। इसलिए जब बाबा कहते हैं तुम अभी पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, दुनिया में कोई भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, अगर करता भी है तो अपने लिए नहीं, है ना। बहुत धन कमा लेता है तो क्या समझता है मेरी पीढ़ियां आगे खाएगी। इतना धन कमा लिया है ना, जोक सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, बहुत कोई कमी नहीं थी, तो रोज अपने जो खजांची थे उनसे पूछता रहता कितना धन है। अब इतना रोज रोज पूछता रहता था तो एक दिन उस खजांची ने उसको बोला, साहब आपको क्या चिंता, आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती, इतना धन है आपके पास, गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, 7 पीढ़ियां खा सकती है। तो चिंता हो गई, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब वो 7 पीढ़ियां भी एक पीढ़ी में ही खत्म कर देगी, कुछ पता ही नहीं पता चलता है क्या, जो 7 पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता करते हैं, एक पीढ़ी का भी भरोसा नहीं है वो क्या करेंगे। और आप मुए मर गई दुनिया, तो वर्तमान में जियो जरूर पर वर्तमान में क्या करो। इसीलिए बाबा की हर मुरली में क्या करो क्या नहीं करो सब बातें आती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा की मुरली में नहीं है। सुबह से लेकर रात्रि तक क्या करो क्या नहीं करो, क्या सोचो क्या बोलो क्या करो, कैसा व्यवहार करो, कैसे आपका चेहरा हो, कैसे आपके बोल हो, सब कुछ बाबा बताते हैं। एक पिता अपने बच्चे को कैसे समझाते हैं, एक माँ अपने बेटी को कैसे श्रृंगार करती है, तो मात पिता बन के बाबा हम आत्मा का श्रृंगार करते हैं। तो अभी जब हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, मन बुद्धि और संस्कार पर, तो तब हम बाबा का दिल जीत सकेंगे। सचमुच किसी का भी दिल जीतना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं ना, कई ऐसे बच्चे होते हैं कितने आज्ञाकारी होते हैं, तो पिता का कितना दिल जीत लेते हैं। पिता को पता चलेगा, मालूम है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी है, मेरे कहने अनुसार चलेगा, तो अपने अपने आप वो बेटे का ना पिता का दिल जीत लेता है बेटा। तो बाबा भी कहते हैं तुम दिल तख्त नशीन कब बनेंगे, दिल का तख्त कब जीत सकेंगे, जब इतने आज्ञाकारी होंगे। तो बाबा की श्रीमत का कदम कदम पर पालन, ये आज्ञाकारी की निशानी है और उससे बाबा का दिल जीत सकेंगे। तो पहले तो हमको इंद्रिय जीत बनना होगा, फिर मन बुद्धि संस्कार को भी आत्मा मालिक हूं, अब जैसे मन को चलाऊं वैसे मन सोचे, फिर बुद्धि भी स्थिर रहे, डावाडोल न हो, अचल अडोल स्थिति हो, न्यारा प्यारा हो, कहीं भी फंसे नहीं। ये तो बुद्धि फंस जाती है, मन तो चंचल है पर बुद्धि फंस जाती है, फिर सोचना समझना सब बंद हो जाता है। और संस्कार तो है ही पुराने, वो पुराने संस्कार फिर उजागर हो जाते हैं। लेकिन इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, आप पुराने संस्कार है, क्या करें क्या न क्या नहीं करें सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे असली जो पुराने संस्कार है वो तो बहुत शुद्ध है। तो इसीलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं हमारे असली संस्कारों की, हमारे असली स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। क्यों बाबा इतनी स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम क्या थे याद करो। तो वो स्मृति हमको कितना समय रहती है, क्योंकि उसी अनुसार ही हम करेंगे। क्या थे क्या बन गए, बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। सतयुग में तुम कैसे थे, ये पांच स्वरूपों की जो स्मृति है बाबा बताते हैं, ये हमारी श्रेष्ठ स्वरूप की स्थिति है। परमधाम में भी आत्मा कितनी श्रेष्ठ थी, लाओ स्मृति में कितनी श्रेष्ठ थी मैं आत्मा पांच परम धाम में। फिर सतयुग में आई तो कितनी श्रेष्ठ थी, फिर द्वापर में हमारा पूज्य स्वरूप जो पूजा के योग्य था वो भी कितना श्रेष्ठ, कितना श्रेष्ठ। वो पूज्य स्वरूप की क्या पूजा होती है, एक एक अंग की पूजा होती है उनके। इसीलिए देवताओं का अंग अंग कमल से भेंट करते हैं, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल, सब कमल कमल। बाबा कहते हैं ये कमल से भेंट सतयुग के लिए नहीं है, ये अभी के लिए है, क्योंकि अभी कीचड़ में है और कीचड़ में कमल बनना है। जहाँ कीचड़ नहीं है वहाँ कमल भी नहीं है, तो सतयुग में कमल की जरूरत नहीं है, वहाँ कीचड़ ही नहीं है। पर संगम पर कमल की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी कीचड़ से हमें निकलना है, न्यारा अलिप्त रहना है। तो स्मृति दिलाते हैं परम धाम में कैसे थी आत्मा, फिर सतयुग में कैसी थी, फिर द्वापर में पूज्य स्वरूप में कैसी थी जो एक एक अंग की पूजा होती है। फिर मैं संगम पर आई तो संगम पर ब्राह्मणों का कितना मान है, जहाँ भी कोई शुभ कार्य होता है वहाँ ब्राह्मण को जरूर बुलाएंगे, बहुत मान है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पतित है। हाँ तुम गायन योग्य जरूर हो लेकिन पूजन योग्य नहीं हो, पूजन योग्य तो भविष्य में बनेंगे। अभी तुमको आज भी बाबा ने लाइट का क्राउन नहीं मिल सकता है, कितनी भी तुम्हारी अंदर पवित्रता हो पर लाइट का क्राउन अभी नहीं मिल सकता है, वो तो पवित्रता का क्राउन है, वो तो भविष्य में मिलेगा। जब तक ये पुराना शरीर है पवित्र आत्मा बन रही है, लेकिन अभी वो ताज नहीं मिल सकता है। और उसके लिए पहले एक राज्य एक धर्म चाहिए, कल जो बाबा ने कहा एक राज्य आत्मा राज्य करे इंद्रियों पर, माया का हस्तक्षेप न हो। फिर एक धर्म हो, सतयुग में एक राज्य एक धर्म है, तो यहाँ एक धर्म कौन सा बाबा ने कल बताया, पवित्रता का। धर्म परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये अपने साथ प्रतिज्ञा हो। और सचमुच हमने देखा है जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है उनका जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाता है, कितना श्रेष्ठ बन जाता है। बिल्कुल पवित्रता की ही पूजा है, पवित्रता की के कारण ही पूजनीय बनते हैं। सन्यासी भी इसीलिए पूजनीय बनते हैं ना, पूजा होती है ना सन्यासियों की, खास गुरु पूर्णिमा के दिन कितनी पूजा करते हैं गुरुओं की। बाबा कहते तुम पूजा नहीं करा सकते हो, तुम किसी को अपने पांव भी नहीं छूने देते, बाबा नहीं छूने देते थे, बच्चे ये शरीर तो तमो प्रधान है। कन्याओं की पूजा भी इसीलिए होती है, छोटी छोटी कन्याओं की नवरात्रि में कितनी पूजा करते हैं, वो पवित्र है। तो पूजा पवित्र पवित्रता की है, शरीर की पूजा नहीं है, ये पवित्रता की पूजा है। उसको कहेंगे एक धर्म और एक राज्य, आत्मा का वर्चस्व अपने शरीर पर। तब ही बाबा कहते हैं भविष्य में राज्य तख्त मिलेगा। और जितना समय ये अनुभव अभी किया उतना समय भविष्य में मिलेगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एवर रेडी बनना होगा। क्योंकि बाबा तीन शब्द कहते, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए क्योंकि अचानक होना है, और अचानक होना है तो हर वक्त तैयार और बहुत काल का अभ्यास। ये तीन शब्द सदा याद रखें। उस जब बाबा की आजकल जो मूल्यां चलती है, जो आज बाबा ने कहा ना, वो तो इंटरनेशनल मामला है ना, बाबा ने आज के मूल्य में कहा। तो उस समय ये 1960 के दशक में, तो उस दशक में बहुत टेंशन था देश दुनिया में, क्योंकि अमेरिका और रशिया आपस में इतने हथियार बना चुके थे जो तैयार थे एक दो पर आक्रमण करने के लिए, इतना तैयार थे। और अगर अमेरिका और रशिया आपस में टकरे तो हालत क्या होगी, तीसरा विश्व युद्ध आ जाएगा। और तीसरा विश्व युद्ध अगर आ गया तो दुनिया खत्म। तो बहुत टेंशन था, जबरदस्त है, अभी भी टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ, रशिया दूसरी तरफ। इसीलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पता है कि अगर मैं करूंगा तो वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, बचेगा कौन। नहीं तो तैयार है, सब तैयार है, रोज एक दो को धमकियां देते रहते हैं। लेकिन क्यों नहीं युद्ध हो रहा है, क्यों नहीं ये सब हो रहा है, इसका मूल कारण बाबा क्या बताते, बच्चे तैयार नहीं है, बच्चे तैयार नहीं है। तो पर्दा कैसे खोले, प्रकृति पूछ रही है बाबा हम कब अपना काम शुरू करें। आज बाबा ने प्रकृति की कितनी बातें कही, कोई ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एक दो प्रकृति के तत्व काम करते और कितनी तबाही मचा के जाते हैं। आज बाबा ने कहा सुनामी जब आता है ना, 100 फीट ऊंचा वो जो लहर चली जाती है, 100 फीट ऊंची भी, तो कितना सब तहस नहस कर देगी, नष्ट कर देगी। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांच तत्वों में से अगर एक तत्व भी कोई आपदा लाता है कितना नुकसान होता है। और पांचों ही तत्व एक साथ काम करे तो क्या हालत होगी, सोचो। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रकृति पूछ रही है मैं अपना काम कब शुरू करूं, एडवांस पार्टी पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें, क्योंकि उनको योग बल से देवताओं को जन्म देना है, तो वो कब अपना काम शुरू करे। तो देखो बाबा से पूछ रहे, बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि करने वाले, राज्य करने वाले तो हम बच्चे हैं, बाबा तो राज्य करेगा नहीं, हम बच्चे कहाँ तक तैयार हैं। तो क्या जवाब देंगे बाबा को, बाबा तैयार हो रहे हैं, या बच्चे अब कहेंगे बाबा अभी नहीं, अभी तो संगम का सुख लेने दो, अभी सोचना भी नहीं है। हाँ ऐसे है क्या कि जाना है घर, जो समझते घर जाना है हाथ उठाओ, अच्छा जो समझते नहीं संगम युग और बहुत साल चले हम उसका सुख लें, वो हाथ उठाओ, अच्छा थोड़े हैं, सब जाना चाहते हैं। हाँ? चलो अब बाबा तो कहते हैं वो तो बच्चों पर निर्भर है, अब हम कितना तैयार हैं वो हम अपने आप से पूछे, तभी तो विश्व राज्य ले सकेंगे। उसके पहले बाबा का दिल जीते, उसके पहले अपनी इंद्रियों को जीते, मन बुद्धि संस्कार को जीते, तभी तीनों तख्त के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चल
तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं जग कंत्री से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए बीच दरबार अपना सजाएं है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा